नमस्कार भारत, 6 दिसंबर दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। दुनिया की जलवायु पर हुए अध्ययन में चेतावनी, इस साल रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचेगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन।
Neue Investitionen in die Kohlekraft sind ein Riesenproblem für uns.
बाबरी ध्वंस की 26वीं वर्षी, अयोध्या में प्रशासन सतर्क, रस्मी आयोजनों की तैयारी में हिंदू मुस्लिम संगठन।
नेता लोग कोई शौर्य दिवस मनाएगा भाई, हमारे जो है हमारे दरवाजे पे आप ढोल बजाएंगे तो क्या हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे? तो इसे समझ लीजिए, आप शौर्य दिवस मनाएंगे तो हम काला दिवस मनाते हैं लोग।
और दुनिया जहान में बात फ्रांस के येलो वेस्ट मूवमेंट की।
एक औरत ने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा दिया था कि ये जो नए टैक्सेस बढ़ रहे हैं, हमें इसके खिलाफ डेमोंस्ट्रेट करना चाहिए।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। एक ताजा अध्ययन में कहा गया है कि इस साल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एक ताजा वैश्विक जलवायु अध्ययन में ये बात सामने आई है और इसका मुख्य कारण चीन को बताया जा रहा है, जहां कोयला जलने और गाड़ियों की बढ़ी संख्या की वजह से विश्व स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर असर पड़ा है। अध्ययन में दावा किया गया है कि इस साल कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर साल 2017 की तुलना में 2.7% बढ़ गया है। चीन की तकनीकी कंपनी हुवेई के प्रमुख वित्त अधिकारी को अमेरिका के कहने पर कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांस की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने की योजनाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया है। फ्रांस में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के सरकारी फरमान के बाद देश भर में कई सुनियोजित प्रदर्शन हुए और कई जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए इन प्रदर्शनों में जहाँ सैकड़ों लोग घायल हो गए, वहीं कम से कम 4 लोग मारे भी गए। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश का अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ वॉशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में हुआ। बीते शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 94 वर्ष के थे। अंतिम संस्कार शुरू होने से पूर्व सैनिकों ने उन्हें 21 बंदूकों की सलामी दी। इस मौके पर सीनियर बुश के पुत्र और पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा, हम आपको बहुत याद करेंगे। आपकी सादगी, समझदारी और दयालुता हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। हमारे ये आंसू आपके प्रति हमारे प्रेम के परिचायक हैं। आप एक बेहतरीन पिता थे। हम अब सिर्फ ये सोचकर खुश हैं कि आप हमारी बहन और माँ के साथ हैं। ये थे पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के शब्द। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका हथियार नियंत्रण से जुड़ी महत्वपूर्ण संधि से पीछे हटता है तो रूस भी खामोश नहीं बैठेगा और जवाब देगा। मंगलवार को अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर रूस 60 दिनों के भीतर अपने रवैये में सुधार नहीं करता है तो अमरीका मध्यम रेंज की परमाणु मिसाइलों की संधि से खुद को अलग कर लेगा। पोम्पियो ने कहा था कि रूस एक दशक से भी पुराने नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहा है। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अमेरिका संधि से अलग होना चाहता है और अपने इस फैसले के लिए वो किसी न किसी तरह रूस को जिम्मेदार बताकर अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। उन्होंने कहा, ये बहुत स्वाभाविक है और लगभग हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है। वे पहले ही कह चुके थे कि वे इस संधि से अलग होना चाहते हैं और अब उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस फैसले को सही बताने के लिए दिए जा रहे हैं। उनके पास कोई कारण नहीं है ऐसा करने का, तो वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने नियमों की अनदेखी की, जबकि ऐसा कहने के पक्ष में उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फेसबुक के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साझा किए गए एक गोपनीय मेल से पता चला है कि फेसबुक ने कंपनियों को यूजर्स के डेटा मुहैया कराए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनियां यूजर्स से जुड़ी जानकारियां देख सकती हैं। ये मामला तब सामने आया है जब कुछ वक्त पहले ही फेसबुक ने डेवलपर्स के पास सीमित डेटा होने की बात कही थी। नेटफ्लिक्स और एयरबीएनबी उन कंपनियों में से हैं जिन्हें ये विशेषाधिकार दिया गया है। मैक्सिको सिटी की निर्वाचित पहली महिला मेयर क्लॉडिया शिनबॉम ने अपने पहले भाषण में कहा कि वो यहाँ अपराध से लड़ने, भ्रष्टाचार को काबू करने और प्रदूषण के बढ़ते खतरनाक स्तर को रोकने के लिए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। बीते करीब दो दशकों से भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मुकाबले रोमांच की गारंटी देते रहे हैं। एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है और दोनों ओपनर के अलावा कप्तान कोहली भी पेवेलियन लौट चुके हैं। भारत ने पहले तीन विकेट सिर्फ 19 रन पर गंवा दिए। फिलहाल भारत का स्कोर है 3 विकेट पर 25 रन। चेतेश्वर पुजारा और अचिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद हैं। बात खेल की हो रही है तो ये बताना लाजमी है कि खेल में फिटनेस की खासी अहमियत होती है, और हम बता दें कि दुनिया की जलवायु पर एक ताज़ा अध्ययन की रिपोर्ट सामने आई है जो पूरे विश्व की तंदुरुस्ती के लिहाज से चिंता की घंटी बजा रही है। इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि इस साल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाएगा। इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं भूमिका राय। जी भूमिका
जी, वात्सल्य शुक्रिया। इस अध्ययन में बताया गया कि इस साल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में इसकी अहम वजह जो है वो चीन की ओर से कोयला जलाने और वहां पे बढ़ी हुई कारों का, जिस तरीके से वहाँ पे कारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसे बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 के मुकाबले इस साल दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2.7% बढ़ गया है।
यानी चीन के अलावा बाकी देशों में भी उत्सर्जन बढ़ा है।
बेशक बढ़ा है, लेकिन मुख्य कारण जो है वो चीन को बताया जा रहा है। और इस अध्ययन को जो है वो नेचर में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर के लिए एक बड़ी चिंता का मामला है। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था उर्गे वॉल्ड की निदेशक हेल्फा शकिंग ने कहा कि कोयला जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में बड़ी बाधा बना हुआ है। उन्होंने कहा, कोयले से ऊर्जा हासिल करने के लिए होने वाला नया निवेश बड़ी समस्या बन चुका है। कोयले का हर नया संयंत्र हमारे और पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने में बाधा बना हुआ है। पेरिस में हुए समझौते के 3 साल बाद भी कोयले के संयंत्र लगातार बढ़ रहे हैं। ये थे हेल्फा शकिंग के शब्द। हम याद दिला दें कि साल 2015 में पेरिस में हुए समझौते में दुनिया के तमाम देशों ने कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल में कटौती का भरोसा दिलाया था, कार्बन के इस्तेमाल में कटौती का भरोसा दिलाया था। लेकिन जिस तरीके से परिणाम अभी सामने आ रहे हैं उससे तो लग नहीं रहा है कि उस पर मुकम्मल तरीके से काम
कुछ अमल हो रहा है। सरकारों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम ये अध्ययन तो एक चेतावनी है। शुक्रिया भूमिका इस जानकारी के लिए। और अब बात भारत की। आज 6 दिसंबर है, यानी आज अयोध्या की बाबरी मस्जिद के ध्वंस को 26 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठनों ने कई रस्मी कार्यक्रमों के आयोजन का ऐलान किया है। इसे देखते हुए अयोध्या में प्रशासन सतर्क है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 6 दिसंबर को हर साल अयोध्या में राजनीतिक सरगर्मी रहती है। इस साल ये गर्मी 2 हफ्ते पहले से ही शुरू हो गई जब शिवसेना ने संकल्प कार्यक्रम और वीएचपी ने धर्म सभा का आयोजन किया। लेकिन आज शहर का माहौल किसी भी हालत में बिगड़ने ना पाए, इसके लिए प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती है। किसी भी बाहरी संगठन को कोई कार्यक्रम आयोजित करने से सख्ती से मना कर दिया गया है, जिसमें अखाड़ा परिषद की बैठक भी शामिल है। अयोध्या के एडिशनल एसपी अनिल सिंह ने बताया कि हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
कुछ लोग शहर दिवस मनाते हैं, कुछ लोग यहाँ में गम काला दिवस मनाते हैं। अलग अलग संगठनों के अलग अलग कार्यक्रम हैं, लेकिन हम लोगों का जो मूल है कि यहाँ फैजाबाद अयोध्या शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। धारा 144 जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरे जनपद में लगी हुई है।
अयोध्या के कुछ मुस्लिम संगठन हाथों में काली पट्टी बांधकर 6 दिसंबर को यौम गम और हिंदू संगठन शौर्य दिवस मनाते हैं। फिलहाल इस आयोजन को लेकर किसी ने कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं घोषित किया है, लेकिन रस्मी तौर पर ऐसा हर साल ही होता रहा है। बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी कहते हैं,
हम हिंदू मुसलमान का दोनों का ऐसे ताल्लुकात हमारे यहाँ है कि हम लोग भी जो है इस तरीके से रहते हैं कि कोई माहौल न बिगड़े और एक दूसरे से लोग मिलते जुलते रहे। ये फैसला अब राजनीति में आ गया है तो लोग राजनीति में कोई करता है, कोई सौर दिवस बनाता है तो कोई काला दिवस बनाता है। हम तो खाली कचरे के चक्कर लगाते हैं, हमारा इतना ही मकसद है। नेता लोग कोई सौर दिवस बनाएगा भाई, हमारे जो है हमारे दरवाजे पे आप ढोल बजाएंगे तो क्या हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे? तो ऐसे समझ लीजिए, आप सौर दिवस बनाएंगे तो हम काला दिवस बनाते हैं। लोग उसी में लोग जान जाते हैं कि 6 दिसंबर है।
वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि शौर्य दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा। वीएचपी के प्रवक्ता शरद शर्मा के मुताबिक इस मौके पर अयोध्या में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित है, जिनमें हवन के साथ राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया जाएगा।
हम यहाँ पर पूज्य संतों के नेतृत्व में बैठने वाले हैं और वो जैसा मार्गदर्शन करेंगे, प्रारंभ से ही उनका मंत्र और विश्व हिंदू परिषद का तंत्र इस आंदोलन को लेकर चलता रहा है। लोग चाहते हैं मंदिर का निर्माण हो।
इस बीच 6 दिसंबर को राम मंदिर के लिए आत्मदाह की धमकी देने वाले महंत परमहंस दास को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
बात दिल्ली की करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में CBI विवाद पर सुनवाई होगी। इस मामले में कल भी सुनवाई हुई थी। अटॉर्नी जनरल ने कल कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा था। कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए हमारे साथी नवीन नेगी ने वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती से बात की।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई कोर्ट में सुनवाई हुई और 3 जज की बेंच था, उसमें संजय किशन कौल थे, KM जोसेफ साहब भी थे। जो 3 जज की बेंच में से सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल तरफ से काफी बहस हुआ, जो कि वेणुगोपाल साहब का ये कहना था कि जो CBI की साख है उसके ऊपर जैसे आंच ना आए, CBI के ऊपर जैसे प्रतिष्ठा के ऊपर आंच ना आए, उसी के लिए इनको हमने डाइवेस्ट किया था। पावर जितने सारे पावर दिए गए थे उनको डाइवेस्ट किया था, इनको ना हटाया है ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ है, इसको आप कार्रवाई के तौर पर बिल्कुल ना लीजिए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि CBI की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर आंच ना आए। जो पब्लिक स्पार्ट हुआ था, पब्लिक यानी कि जो उनके बीच वर्बल डुएल हुआ था, वर्बल डुएल को देखते हुए और काफी पब्लिक में भी ये चर्चा चल रही थी, CBI में दो डायरेक्टर के बीच, स्पेशल डायरेक्टर डॉक्टर के बीच काफी तनातनी चल रही, उसी को लेके इसलिए उनको डाइवेस्ट किया गया था। सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि देखिए जो CBI है देश का सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सबसे बड़ा जांच एजेंसी है, उसका अगर दो ऑफिसर के बीच तनातनी चल रही है, वर्बल डुएल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक है, आम जनता है, उनका बहुत CBI के ऊपर भरोसा होती है, तो उनका अगर इस तरीके से लड़ना, अगर पब्लिक के बीच में डिस्कशन वाली बात होगी, गसीब होगी, तो जाहिर सी बात है प्रॉपरली काम CBI काम नहीं कर पाएगी।
अभी ये मामला कितना लंबा खींचता हुआ आपको नजर आता है और किस पक्ष की ओर जाता हुआ दिख रहा है?
देखिए आज जब सुनवाई होगी, अभी सुनवाई लगभग 10:30-10:35 पे शुरू हो जाएगी, तो हम कुल मिला के ये कहेंगे कि फैसला सुरक्षित रखेंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि CVC की तरफ से जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो सबमिशन अपना देंगे। सबमिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट शायद बोल सके कि जो भी पक्ष बचा है वो अपना रिजेंडर फाइल कर दे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख दे। तो हमें लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला अपना सुरक्षित रख लेगा, कुल मिला के ये हम कह सकते हैं।
ये थे पत्रकार सुचित्र मोहंती जो बता रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है। उधर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण को लेकर भी राजनीतिक छींटाकशी का दौर शुरू हो गया है। कल राजस्थान की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशेल के प्रत्यर्पण का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधा।
हेलीकॉप्टर के घोटाले में एक राजदार पकड़ करके हम ले आए हैं आज दुनिया के, और वो क्या क्या निकलेगा पता नहीं। ये कांप रहा है, पूरा परिवार कांप रहा है कि ये राजदार को ले आए हैं विदेशों से पकड़ करके, अगर वो मुंह खोलेगा पता नहीं किसका नाम बोलेगा।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। BJP इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, लेकिन क्या BJP को इसका फायदा मिलेगा और क्या कांग्रेस को इससे कोई नुकसान होगा? हमारे साथी नवीन नेगी ने यह सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी से।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही वो आए हैं और इस समय पे लाए गए हैं जब राजस्थान में 2 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए, एकदम मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत उपयोग करना चाहती है। मोदी जी वैसे ही अपने प्रचार में गांधी फैमिली को हमेशा अटैक करते रहते हैं, तो अब उनको एक जिसे कहते हैं एक छड़ी मिल गई है उनको मारने की।
लगातार राहुल गांधी रफेल सौदे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे और BJP के हाथ अगस्ता वेस्टलैंड का मामला चुनावों से पहले लग गया है, तो क्या हम इसको ये समझ सकते हैं कि राफेल बनाम अगस्ता वेस्टलैंड ये बन जाएगा?
देखिए इट बी लाइक अ फाइटर जेट वर्सेस अ हेलीकॉप्टर। मुझे लगता है दोनों पार्टियां एक तरह से स्कैम वर्सेस स्कैम का जो खेल खेल रही हैं वो जनता को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जनता असली मुद्दों पे से परेशान है, उस पर फैसला करेगी। जहाँ पे आपके बिजली सड़क पानी नहीं है, उस वोटर को क्या मतलब कि कौन सा राजदार लाया गया है और किसने कौन सा चौकीदार ने क्या किया।
मतदाताओं को ऐसे मुद्दे कितना प्रभावित कर पाते हैं आमतौर पे? क्या सचमुच में मतदाता इन सब चीजों को देख के वोट भी डालते हैं या फिर वो कुछ और ही मुद्दे होते हैं जिनके बारे में वो इंतजार कर रहे होते हैं?
देखिए हमारे मतदाता बहुत ही ज्यादा विवेक रखते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ रखते हैं, अपना वोट बड़ा केयरफुली इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो वोटर है वो चाहता है कि जो उसको वादे किए गए थे, अब आपको याद होगा जब 2014 में जब मोदी जी आए थे उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की थी, अच्छे दिन की बात की थी, अब वो खुद ही अच्छे दिन का नाम नहीं लेते, तो मतलब अच्छे दिन बैन हो गया है। राहुल गांधी अपना पूरा समय इसमें बिताते हैं कि मोदी जी ने क्या गलतियां की हैं, मोदी जी हमको नाना नानी याद दिलाते हैं।
क्या आपको लगता है कि इस मामले का जो फैसला है वो अगले साल तक चुनाव से पहले आ पाएगा या फिर एक चुनावी शगुफा, एक चुनावी मुद्दा बनकर ही ये हवा में रहेगा?
पूरी तरह से एक चुनावी मुद्दा बन के रहेगा। माइकल एक ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटिश एम्बेसी ने, हाई कमिश्नर ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो चाहते हैं उनके बारे में, उनको उनकी एकदम देखभाल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो अब राजस्थान में 2 दिन में वोटिंग है, ये सिर्फ इसीलिए एक तरह से आए हैं कि राजदार राजदार का नारा लगाया जाए, और एक साल में तो नींव में तो ये समझती हूँ कि अभी तो 2 दशक लग जाएंगे, इसमें कोई फैसला नहीं होगा।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी। और अब बात बिहार की। बिहार में एक बंगले को लेकर खींचतान चल रही है। ये बंगला है राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। सरकार इसे खाली कराने की कोशिश में है और तेजस्वी सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं। सुनिए नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले को खाली कराने की कवायद तेज हो गई है। भवन निर्माण विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिए जाने के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की टीम बुधवार को भारी पुलिस बल के साथ तेजस्वी यादव के 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगले को खाली कराने पहुंची, लेकिन तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में राजद विधायकों ने मौके पर मोर्चा थाम लिया। राजद विधायक बंगला खाली कराने के विरोध में वहीं धरने पर बैठ गए। आखिर में तेजस्वी यादव के वकील की ओर से LPA पेश किए जाने के बाद प्रशासन की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। अपना बंगला खाली कराए जाने की खबर सुनकर दिल्ली गए तेजस्वी यादव बुधवार की दोपहर को ही आनन-फानन में पटना लौट आए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने न सिर्फ पूरे मसले पर अपना पक्ष रखा, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बंगले की राजनीति करने का भी आरोप लगाया।
घर के अंदर जब CCTV लगवा सकते हैं और जिस प्रकार से बार बार पलटी मार सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं, लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर सकते हैं, तो नाम ही नीतीश कुमार है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में जदयू ने भी तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर बेनामी संपत्ति हथियाने समेत तमाम आरोप लगाए। BBC से बात करते हुए जदयू प्रवक्ता नीरज ने कहा,
विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के द्वारा बंगला खाली कराने को भी राजनीतिक मुद्दा बताया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि माननीय न्यायालय ने उनको बंगला खाली करने का आदेश दिया। इस आधार पर कि हमने अपील दायर किया है, न्यायपालिका ने कोई भी संबंध में अंतरिम रोक नहीं लगाया।
आवास खाली कराने के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में अपील की है। BBC से बात करते हुए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव कहते हैं,
मंत्री के हैसियत से ये इनको ये बंगला अलॉट हुआ था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, तो ये बंगला तो मंत्री स्तर का ही है। जब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं उन्होंने अपने नाम से अलॉट करा लिया इसको, जबकि जिस शहर में रह रहा है वो पिछले 15 साल से रह रहा है उसमें।
BBC ने इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि से भी संपर्क किया। इस पर पटना के DM ने कहा कि वे भवन निर्माण विभाग के नोटिस के आधार पर कार्रवाई कर रहे थे, अब आगे जो होगा वह अदालती आदेश के अनुसार होगा। तेजस्वी यादव के बंगले को खाली कराने की कवायद फिलहाल के लिए रुक जरूर गई है, लेकिन इसके चलते बिहार में राजनीति एक बार फिर हिलोरे लेने लगी है। नीरज प्रियदर्शी, BBC पटना।
और अब भूमिका राय से जान लेते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां।
जी वात्सल्य जी, अगर दिल्ली से छपने वाले प्रमुख अखबारों की बात करें तो अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से जुड़ी खबर जो है वो लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उनके प्रत्यर्पण पर नरेंद्र मोदी के बयान को अपनी लीड खबर बनाया है, जो हमने अभी अपने श्रोताओं को सुनाई भी। इसके अलावा अखबार ने राजस्थान में हाई वोल्टेज कैंपेन जो था वो बंद हो गया है और वहाँ पे कल यानी 7 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, इस खबर को भी पहले पन्ने पर लिया है।
तेलंगाना में भी कल चुनाव
जी। और दैनिक हिंदुस्तान अखबार ने आम्रपाली बिल्डर की संपत्ति जब्त किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। इसके अलावा कल साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई, हिंदी में चित्रा मुद्गल को इस वर्ष साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने यूथ कांग्रेस के विधिक इकाई के राष्ट्रीय प्रभारी अलजो के जोसफ को पार्टी से निकाले जाने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। द हिंदू ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बयान को पहले पन्ने पर जगह दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वो एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं,
यानी बिहार की राजनीति में एक नया मोड़।
बेशक अमर उजाला की एक खबर का जिक्र करते चलूं तो अखबार लिखता है कि गंगा बचाने के लिए 116 दिन से अनशन पर बैठे संत गोपाल दास एम्स से अचानक गायब हो गए हैं। तो ये रही आज की प्रमुख खबरें।
बहुत शुक्रिया भूमिका राय अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब दुनिया जहां, फ्रांस हाल में एक जोरदार आंदोलन का गवाह बना। येलो वेस्ट मूवमेंट ने न सिर्फ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा बल्कि फ्रांस की सरकार को नीति बदलने पर भी मजबूर कर दिया। दुनिया जहान में इस आंदोलन की वजह और इसके तरीकों की पड़ताल की है हमारे साथी आदर्श राठौर ने।
दुनिया जहां, ये आवाज है फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध स्मारक आर्क द ट्रायंफ के बाहर नारे लगाते येलो वेस्ट मूवमेंट में शामिल प्रदर्शनकारियों की। ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और सरकार की कथित अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सत्रह नवंबर 2018 को फ्रांस में येलो वेस्ट या येलो जैकेट मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो उसके पड़ोसी देशों इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड तक फैल गया। बाकी जगह तो ये इतना असरदार नहीं हुआ, लेकिन फ्रांस में अब तक इस आंदोलन की धमक महसूस की जा रही है। दो हफ्तों से भी ज्यादा समय तक पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन क्या वजह रही जो लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए? पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नराव ने बताती हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसमें कौन कौन शामिल हुआ।
गवर्नमेंट कह रही है लोगों को इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करने का एनकरेजमेंट देना चाहिए और डीजल को कम करना चाहिए, तो डीजल के ऊपर टैक्स लगा दो। तो ये जो मूवमेंट है वो नीचे मध्यम वर्ग का प्रिंसिपली उनका मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो एक औरत ने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा दिया था कि ये जो नए टैक्सेस पड़ रहे हैं उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमें इसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, और ऐसा वो आंदोलन चल पड़ा।
फ्रांस में डीजल के दाम पिछले 12 महीनों में 23% से अधिक बढ़ गए हैं। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ मगर फ्रांस में कीमत कम नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने हाइड्रोकार्बन टैक्स बढ़ा दिया है। तो क्या इस बात के लिए युवा राष्ट्रपति मैक्रों के कम अनुभव को जिम्मेदार माना जाए जो वो लोगों के दर्द को नहीं समझ पाए? दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा बताती हैं कि इसके और भी कारण हैं।
इसमें मैक्रोन की दूरदर्शिता को हम इतना दोष नहीं दे सकते जितना ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, मार्केट फोर्सेस हैं, वो काफी हद तक इन चीजों को डिटरमिन करती है।
हालांकि पेरिस में रह रही वरिष्ठ पत्रकार वैजू नराव ने मानती हैं कि कहीं न कहीं मैक्रों की पृष्ठभूमि भी ऐसी है कि शायद वो निम्न मध्यम वर्ग की समस्याओं को समझ नहीं पाए।
क्लास ए प्रेसिडेंट मैक्रों निकले हैं तो वो बिल्कुल एलिटिस्ट ग्रुप जिसको हम कहते हैं उसमें वो शामिल है, इसलिए आम लोगों के साथ उनका कांटेक्ट बहुत कम रहा है।
दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां सरकार की नीतियों और फैसलों का विरोध न होता हो और उन्हें लेकर आंदोलन न होता हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसे आंदोलनों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिला होता है। लेकिन येलो वेस्ट मूवमेंट में कोई नेता नहीं है और न ही राजनीतिक पार्टियां इसकी कमान अपने हाथ में ले पाईं। फिर ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो गया? डॉक्टर शीतल शर्मा बताती हैं कि फ्रांस के लोग अपने अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक हैं।
फ्रांस में ट्रेड यूनियनिज्म बहुत स्ट्रांग रहा है हमेशा से, क्योंकि फ्रांस के लोग जो हैं वो बहुत, जो लेबर क्लास है एटलीस्ट, वो बहुत गठित रहती है और अपने अधिकारों के लिए काफी लड़ते हैं। पर जो ये है पर्टिकुलर येलो वेस्ट, इसको कहा जा रहा है कि बहुत दशकों के बाद एक इस स्तर पे होना, जो पेरिस में भी हुआ और आसपास के छोटे छोटे शहरों में भी हुआ है, ये कुछ है जो इतिहास में अलग हुआ है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण ही ये आंदोलन हुआ। भले ही ईंधन के दाम इस आंदोलन के तात्कालिक कारण हों, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार वैजू नराव ने बताती हैं कि इसके पीछे सरकार की वो नीतियां भी हैं जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरी करती जा रही हैं।
तो ये लोग कह रहे हैं अगर आप ये जो टैक्सेस आप लगाना चाहते हो तो आप प्लीज थोड़ा ग्रेडेड टैक्सेशन लगाइए ना, जो सबसे वीकर सेक्शन है उस पे जोर ना लगे। यहाँ की सिस्टम ये है कि अगर आप सैलरीड वर्कर हो या किसी बिजनेस के साथ काम करते हो तो आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट है वर्क प्लेस पे आने जाने का, उसका 50% आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और आपको खुद की गाड़ी निकालनी पड़ती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो फीलिंग है, जो सेंटिमेंट है, वो बहुत की हमारे ऊपर थोड़ी अनइक्वल, हमें अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रही है।
डॉक्टर शीतल शर्मा मानती हैं कि ये आंदोलन एक सबक है, क्योंकि जनता में बढ़ते असंतोष को समझदारी के साथ शांत नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं।
फ्रेंच वे ऑफ लाइफ बहुत ही अलग है, जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी तरह की वैल्यूज को प्रमोट करता है। यहाँ पे अगर कोई इस तरीके की आर्थिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के इंडिकेटर्स आते हैं या लोगों में असंतोष आता है तो इसको सरकारों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बट ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को माइग्रेंट्स के साथ या बाहर देश के आए लोगों के साथ अगर इंटीग्रेट कर दिया तो वो बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो फिर कम्युनिटीज को कम्युनिटीज के अगेंस्ट पिच कर देगा।
येलो वेस्ट मूवमेंट के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ और हिंसा की जिसके कारण ये आंदोलन थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन फ्रांसीसी सरकार को झुकना पड़ा और उसने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्सों को 6 महीने के लिए टाल दिया है। लेकिन सवाल बना हुआ है कि जब इस आंदोलन के नेता ही नहीं थे तो कैसे मान लिया जाए कि सरकार के इन कदमों से आंदोलनकारी शांत हो जाएंगे और दोबारा सड़कों पर नहीं उतरेंगे। ये सवाल न सिर्फ फ्रांस सरकार को परेशान कर रहा है बल्कि अन्य देश भी चिंतित हैं कि कहीं उनके यहाँ भी कोई ऐसा ही बिना नेतृत्व वाला आंदोलन खड़ा न हो जाए।
आदर्श राठौर की प्रस्तुति दुनिया जहान का ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच की। मैच का ताजा अपडेट देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी अपूर्व कृष्ण। जी अपूर्व जी,
वात्सल्य, मैच पे काफी निगाहें लगी हुई हैं और कहा जा रहा है कि विराट कोहली के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि पहली बार शायद भारत विदेशी धरती पर शायद कोई सीरीज मैच काफी जीते हैं भारत ने, लेकिन सीरीज आज तक नहीं जीती
ऑस्ट्रेलिया में,
ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में चुनौती खास बड़ी है। कहा जा रहा है कि इस साल जिस तरह से इंग्लैंड में भारत की फजीहत हुई उसके बाद सबकी निगाहें लगी हुई हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आज उतरी है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच एडिलेड में शुरू हुआ है और टॉस कोहली के हाथ में रहा, लेकिन किस्मत लगता है शायद वहीं तक साथ थी क्योंकि उसके बाद शुरुआत काफ़ी ख़राब रही है भारत की और 3 बल्लेबाज जो दोनों ओपनर थे केएल राहुल, मुरली विजय, ये तो गए ही। उसके बाद सबसे बड़ा झटका लगा है भारत को जब कप्तान कोहली मात्र 3 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ताज़ा स्कोर जो है वो 19वां ओवर चल रहा है और 3 विकेट पर 38 रन, और एक समय भारत की नौबत ये आ गई थी कि 19 रन पे भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। तो मैच अभी एक तरह से कहा जाए भारत में बल्लेबाजों के लिए काफ़ी संघर्ष भरा है।
जी बहुत शुक्रिया अपूर्व जी अपडेट के लिए। और चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। एक ताज़ा अध्ययन में कहा गया है कि इस साल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। फ्रांस की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने की योजनाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया है। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश का अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ वॉशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में हुआ। चीन की तकनीकी कंपनी हुवेई के प्रमुख वित्त अधिकारी को अमरीका के कहने पर कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया है। फेसबुक के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच साझा किए गोपनीय ईमेल्स से पता चला है कि फेसबुक ने कुछ कंपनियों को यूजर्स के डेटा मुहैया कराए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।